ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बट्टी में आए हुए बाबा के विशेष बच्चे, जो ज्ञान सरोवर में बट्टी करने के लिए आए, जहां देश विदेश के भाई बहने आकर रहते हैं और 3 दिन रहने के लिए भी कई लोग जहां के लिए तरसते हैं। पिछले कोरोना में 2 साल भट्टियां चली, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कई भाई बहने करके गए, और जिनको पिछले 20 साल में रहने को नहीं मिला, ऐसे टाइम में उनको यहां रहने को मिला तो सभी को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे स्थान पर बाबा के बच्चे, और जहां पर प्रकृति का नेचुरल सहयोग है, किसी प्रकार की मोटर गाड़ी, कोई प्रकार की आवाजें, दुनिया से बिल्कुल न्यारा स्थान, जहां बाबा कहते हैं ना, तपस्या मना अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करना, तो वो गुफा ये ज्ञान सरोवर है। आप जिस कोने में बैठे हैं, अभी बाहर किसी को पता ही नहीं कि यहां इतने लोग हैं भी, है ना। तो ऐसे एकांत का पूरा फायदा लेने के लिए 3 दिन का अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहां पहुंचे, तो अवश्य ही आपने इतना फायदा लिया भी होगा। सभी बाबा के बच्चे बैठे हैं, मुरली तो कोई भी मिस कभी करते ही नहीं होंगे, शायद ही ऐसे भी कोई है जिन्होंने ज्ञान में आए हैं उसके बाद में कभी मुरली मिस नहीं किए। देखो बहुत सारे हैं, और हम भी हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि दादी गुलजार जी ये प्रश्न कई बार पूछती थी। जब निवासियों का क्लास होता, दूसरा क्लास कराती, दादी बोलती कि जो शुरू से मुरली सुनते आए हैं वो हाथ उठाओ, जिन्होंने कभी मुरली मिस नहीं की, चाहे वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, या कहीं किसी फंक्शन में उनको जाना है, या किसी ने शरीर छोड़ा है, परंतु मुरली पहले पढ़ करके, है ना। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ, इसका मतलब तो सभी को पता होगा ना। हाँ, तो कहने का मतलब मुरली फर्स्ट हमारा एम ऑब्जेक्ट है। मुरली से हमें सर्व प्रकार के खजाने मिलते हैं, और मुरली मंथन करना, पॉइंट्स को रिपीट करना एक अलग बात है, लेकिन मुरली की बातें निरंतर हमारे मन में चलती रहे, मुरली अंदर में गूंजती रहे। जैसे कल या परसों की मुरली में बाबा ने, कल ही बताया था शायद, मुरली की क्या विशेषता बताई, एक है 14 कला वाले की निशानी बताई, और एक मुरली 16 कला वाले की। तो मुरली किस प्रकार की, बिल्कुल हल्की, नाचने गाने उड़ाने वाली मुरली, और बाकी सब बोझ वाली बातें। तो मुरली का चिंतन करना माना ही अंदर से सदा हल्के रहेंगे। फिर किसी प्रकार की अंदर में उलझन आएगी ही नहीं। तो मुरली से बाबा हमें क्या बना रहे हैं, मानुष ते देवता किए करतन लागे वार, मुरली से देवता, ऐसी पढ़ाई कभी सुनी आपने, पहले कभी सोचा था पढ़ने के टाइम कि ऐसी भी कोई पढ़ाई होती है। बाबा कहते हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, साइंटिस्ट, ये सभी तो बनते हैं, लेकिन पढ़ाई से देवता बने ये तो कभी सुना नहीं। तो ऐसी स्कूल और पढ़ाने वाला स्वयं टीचर हमारा बाप शिव बाबा परमात्मा, तो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई पर हमारा दिन भर में कितना अटेंशन होना चाहिए। और अभी तो जैसे कि सब कुछ, और कुछ तो करना ही नहीं है, धंधा करने वाले को, ऑफिस में जाने वाले को, या खाना बनाने वाले को, कुछ नहीं, यहाँ तो बिल्कुल एकांत। तो पढ़ाई माना गॉडली स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, तो वही चिंतन केवल करना है। जिस मुरली का गायन कलयुग के अंत तक भी चलता है, वो कौन सी मुरली है? वो काठ की मुरली नहीं, लेकिन उस रूप में चलता है। जिन ब्राह्मणों ने मुरली सुनी, उन ब्राह्मणों का गायन कलयुग के अंत तक भी। अव्यक्त मुरली में बाबा ने यह भी बहुत अच्छी बातें बताई, ड्रिल भी कराई बाबा ने, तो अपने सारे स्वरूपों का दर्शन भी करा। अब दिन भर में चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ भी कर्म करते, अपने पांचों स्वरूपों को सामने लाना बार बार में, उसी में खोए रहना, तो दूसरी बातें तो कोई भी याद स्वतः ही नहीं आएगी। यही तो सबसे बड़ा स्वदर्शन चक्र है कि बाबा हमें जो मुरली में सुना रहे हैं, वो सारा स्वदर्शन चक्र ही फिराना सिखा रहे। उसमें से कोई भी एक पॉइंट्स भी अगर हम ले लेते हैं और एक पॉइंट्स को लेकर के भी मनन चिंतन कुछ शुरू करते हैं, तो मुरली की सारी बातें ही आने लगती है। जैसे कहते हैं ना, बुराइयों की भी सेना होती है, वो एक बुराई आएगी, बॉडी कॉन्शियस आया, देह भान में आए, अभिमान में आए, तो सारी चीजें बुराइयों वाली आती जाएगी। सब विकारों का भी संगठन है, तो दिव्य गुणों का भी संगठन है। एक सहनशीलता को धारण करेंगे तो क्या होगा, दूसरे गुण भी स्वतः ही आएंगे। तो एक में भी स्पेशलिस्ट बन गए, माना दूसरे गुण स्वतः आते जाएंगे, तो इतना जरूर ध्यान रखना है। अब मुरली में बाबा हमें रोज रोज सबसे ज्यादा पहला पाठ कि मैं कौन, दिन भर में जो हम प्रयोग करते हैं शब्द का, लेकिन उसी को पॉजिटिव में सोच करते हैं तो वही शब्द उड़ाने वाला बन जाता है, और उसी मैं को दिन भर में बोलते रहते हैं बकरी की तरह, तो वो फिर उल्टा हो जाता है ना, व्यर्थ चलाने वाला। तो व्यर्थ का चक्र भी इन पांचों बातों से, जैसे दादी जी हमेशा बताती थी, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सारे जो प्रश्नवाचक हैं, यही व्यर्थ को चलाने वाले हैं, और यही बातों के द्वारा हम समर्थ चिंतन कर सकते हैं, इनके द्वारा प्राप्तियां भी कर सकते हैं। तो दिन भर में सोल कॉन्शियस सबसे पहली बात, जिसको भी देखते हैं, अभी यहां से जाएंगे, कईयों से मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन वो करते हुए भी, वो तो कर्मयोगी हैं तो जरूर संपर्क में तो आना ही है, लेकिन सोल कॉन्शियस का विशेष अटेंशन रखने से फिर बाबा की याद भी स्वतः बनी रहेगी। लेकिन अगर सोल कॉन्शियस नहीं है, सबसे पहले हम अपने स्वमान की सीट पर नहीं है, तो फिर क्या है, कभी भी अपसेट हो सकते। इसलिए सीट पर हैं तो दुश्मन वार नहीं करेगा, सीट पर हैं तो हम अपने राजा हैं, और सीट पर नहीं है तो राजा क्या हो जाता है, गुलाम बन जाता है। गुलाम बन जाता है तो इंद्रियों का गुलाम, फिर ये इंद्रियां अपनी तरफ से उसको चलाती है और धोखा देती है। तो स्वराज्य अधिकारी, स्वयं का राजा बनना, ये बाबा हमें रोज की मुरली में सिखाते हैं। कि यहां हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो स्वयं की बार बार में जांच करना दिन भर में कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख, जो भी इंद्रियां हैं, सब मेरे राजा के अनुकूल ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं या कोई अपनी मनमत से चल रहे हैं, बिना उसके चल रहे हैं ऑर्डर के। अगर बिना ऑर्डर के चल रहे हैं तो राजा गुलाम हो चुका, फिर कोई भी चीज उसकी व्यवस्थित नहीं होगी। तभी हो सकती है व्यवस्थित जब हम पहले अपनी सीट पर सेट हैं, सोल कॉन्शियस हैं, हम व्यवस्थित बैठे हुए हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने किस प्रकार से शुरू किया मुरली, है ना? क्या बताया बाबा ने? पहला पॉइंट्स कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को ध्यान में रखना। अब गुह्य गति क्या है? कर्म तो कर्म होते हैं, हम दिन भर में करते हैं। फिर बाबा ने कर्मयोगी का टाइटल से भी वरदान में भी शुरू किया, कर्मयोग की बात बताई। तो कैसे कर्म? एक होते हैं साधारण कर्म, कर्म करते हैं कोई प्रकार का, ठीक है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और साधारण कर्म की न कोई प्राप्ति है तो न कोई विशेष वो है नुकसान, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब जो भी कर्म करते हैं तो एक साधारण कर्म है। लेकिन उसी को याद में हम जोड़ देते हैं संगम युग पर, तो वही कर्म विशेष हो जाते, है ना? फिर बाबा ने कहा अकर्म, तो अकर्म किसको कहेंगे? अकर्म कहाँ होते हैं हमारे, हैं? सतयुग में अकर्म होते हैं, जिन कर्मों का किसी प्रकार का कोई जैसे कि लेप छे भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है, उसका कोई बुरा परिणाम भी नहीं तो अच्छा भी नहीं तो कुछ भी नहीं, कर्म अकर्म है। यहाँ के किए हुए कर्मों की प्रारब्ध सतयुग में हम प्राप्त करते हैं, तो अकर्म। और विकर्म की गुह्य गति, हाँ, ये कर्म विकर्म जो बनते हैं इसकी जरूर गुह्य गति है। तो गुह्य गति क्या है? बात वहीं आ जाती है कि अपनी हर इंद्रियों के ऊपर ऑर्डर प्रमाण उनको चलाना राजा बनकर। अगर श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं तो हम मालिक होकर ही कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। साधारण स्वयं को भूल कर करने वाले जो भी कर्म करते हैं वो तो सिंपल और साधारण कर्म होते हैं, व्यर्थ के भी कह सकते हैं। लेकिन सोल कॉन्शियस में स्थित होकर शिव बाबा की याद में रहकर जो भी कर्म करेंगे वो हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएंगे। बाकी तो विकर्म की तो अभी बात कहेंगे ही नहीं, एक प्रकार से कि किसी को दुख देना, लूटना, धक्का मार देना, नुकसान कर देना, गाली देना, क्रोध करना, हिंसा करना, अनेक प्रकार की बातें हैं, तो उनको विकर्म कहेंगे सभी बातों को। तो वो कर्म तो अभी ब्राह्मण, उन कर्मों से हम जानकारी हो गई ना, तो अब वो कर्म तो कर ही नहीं सकते। जानबूझकर तो किसी को दुख नहीं दे सकते ना, किसी की चीज को जानबूझकर उठाकर चोरी कर लेना, अपने पास रख लेना, ये तो ब्राह्मणों के कर्तव्य ही नहीं है, है ना? तो ऐसे वाले कर्म हमें नहीं करने हैं। तो फिर बाबा हमेशा एक शब्द देते हैं कि श्रीमत के अनुकूल हर चीज करना। अब सवेरे से शाम तक की सारी दिनचर्या की श्रीमत हमें मिली हुई होती है कि सवेरे उठते ही क्या करना है और रात्रि तक क्या करना है, सारा चार्ट दिनचर्या जो मिली हुई है उसके प्रमाण अपने जीवन में उन सब बातों को लागू करना, हर कर्म के साथ में कर्म योगी बनने का लक्ष्य रखना, कोई भी कर्म करते हैं उठने से लगाकर, सवेरे सवेरे उठते हैं, अमृत वेले नहा धो के तैयार होते हैं, बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, तो अच्छी बातें जो बाबा ने बताई हुई है वो बातें हमारे रोज की दिनचर्या में इस प्रकार से आ जाए कि उसके लिए कोई मेहनत न लगे, क्योंकि ये हम ब्राह्मणों की दिनचर्या का अंग हो गया, उसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे कि मुरली है, पढ़ाई है, अब पढ़ने वाला बच्चा चाहे कितना भी वो थोड़ा वीक भी हो, कमजोर भी हो, या स्कूल जाना भी न चाहे, लेकिन लौकिक में माँ बाप क्या करते हैं, उसको स्कूल में कैसे भी करके भेजते हैं कि पढ़ेगा तो इसका स्टेटस बनेगा, बढ़ेगा तो कमाई करेगा, पढ़ेगा तो पद पाएगा। तो पढ़ाई के पीछे ही सारी बातें हैं। पढ़ाई नहीं है तो वो तो ठोट है, बोले अनपढ़ है, तो अनपढ़ को क्या मिलेगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत महत्व है। अच्छा बोलते हैं।